हरे कृष्णा। तो आज के तिथि पर कई कई साल पहले भगवान ने एक बड़ा अद्भुत रूप धारण किया था, जिस रूप को समझने में बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप जैसे असुरों की बात तो दूर है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, मैं अनेक बार इस भौतिक जगत में प्रकट होता हूं और हर बार जब मैं प्रकट होता हूं तो लोग कहते हैं कि ये मेरा जन्म है, परंतु ये जान लो कि ये तथाकथित जन्म किसी साधारण मर्त्य या मृत्यु के लिए निश्चित जो व्यक्ति है उसके जन्म की तरह नहीं है। मैं केवल प्रकट होता हूं मेरी अंतरंगा शक्ति, मेरी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। उसी प्रकार से मेरे जो दिव्य कर्म हैं वो भी साधारण नहीं है। साधारण व्यक्ति यहां कर्म करते हैं, कर्म के फल उनको मिलते हैं। अगर अच्छे कर्म किए हों तो अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म किए हों तो बुरे फल मिलते हैं। लेकिन चाहे अच्छे कर्म किए हों या बुरे, व्यक्ति को इस संसार में अपने कर्म फलों से बंध जाना पड़ता है। परंतु मेरे कर्म, हे अर्जुन, ऐसे नहीं हैं। मेरे कर्म दिव्य होने के नाते वो किसी भी बंधन में नहीं है। स्वेच्छा से मैं प्रकट होता हूं और मेरे भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए मेरे भक्तों का मन, बल्कि सारे ब्रह्मांड का मन मुझसे आकर्षित करने के लिए मैं यहां सुंदर और अद्भुत लीलाओं को प्रदर्शित करता हूं। मेरा इस धरातल में प्रकट होने का उद्देश्य है कि यहां जितने भी जीव बद्ध अवस्था में हैं, मेरे माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, उन सबको अज्ञान से मुक्त कर मेरे धाम में मेरे साथ वापस ले जाना है। ये सारे जीव मेरे बच्चे हैं, मेरे अंश हैं, परंतु मुझे भूल चुके हैं और मैं यहां धरातल में इस भौतिक जगत में प्रकट होता हूं मेरी कृपा उनको देने के लिए, उन सबको वापस मेरे पास ले आने के लिए। तो जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, भौतिक नहीं है, और जो तत्वतः भली भांति इस सत्य को जान लेता है वो निश्चित ही इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा और मेरे धाम को प्राप्त होगा, जो कि सबसे परम गति है हर एक जीव के लिए। तो फिर भगवान समय समय पर युग युग में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कारणों से अलग अलग उद्देश्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न अवतारों को ग्रहण करते हैं। अवतार मतलब जो अवतीर्ण होते हैं, जो उतर के आते हैं। भगवान अपने दिव्य धाम से यहां पर हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के अनेक अवतार हैं, राम आदि, और इन अनगिनत अवतारों में से एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है श्री नरसिंह देव। ये एक ऐसा रूप है भगवान का जो बड़ा विचित्र है, क्योंकि इस अवतार में भगवान ने दोनों नर रूप और सिंह रूप को जोड़ दिया। और इसके पीछे इतिहास ये है कि हिरण्यकश्यप जो कि बहुत बड़े असुर थे, उन्होंने सोचा कि मैं भगवान से ज्यादा चालाक हूं, ज्यादा बुद्धिमान हूं। वैसे तो भगवान क्या है, लोग कहते हैं कि ये विष्णु है या कृष्ण, ये भगवान है, लेकिन मैं ऐसी शक्ति प्रदान करूंगा जिससे कि कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और इस हेतु हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या की, लंबे समय तक तपस्या की, और ऐसी तपस्या की जो कि इतिहास में किसी ने भी नहीं देखा था। हिरण्यकश्यप की इच्छा थी कि ब्रह्मा जी को वो प्रसन्न करें और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करें। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, परंतु वो भी अपने सृष्टि के निर्माण के कार्य में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जी को भी शक्ति सृष्टि के निर्माण के लिए मिलती है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं ब्रह्मा जी इस सृष्टि के कार्य के, इस सृष्टि के निर्माण के कार्य में, वो स्वतंत्र नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैसे भगवान जब यहां प्रकट होते हैं तो सारे जीव उनसे आकर्षित होकर उनकी भक्ति करना शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं खुद शुद्ध भक्त है, परंतु हिरण्यकश्यप जैसे भक्त भगवान की भक्ति करने के बजाय ब्रह्मा जी जैसे देवताओं की उपासना करते हैं, केवल इस भौतिक जगत में लाभ और भोग प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी के पास जब हिरण्यकश्यप आए, या ब्रह्मा जी जब हिरण्यकश्यप के पास गए, हिरण्यकश्यप की तपस्या देखकर ब्रह्मा जी भी चकाचौंध हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसी तपस्या आज तक मैंने नहीं देखी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ऐसे तपस्या नहीं कर पाए हैं। ऐसे हिरण्यकश्यप कई लाखों लाखों वर्ष एक पैर पे खड़े हुए, दोनों हाथों को ऊपर किया और सूरज की ओर देखते रहे। उनके शरीर के का जितना भी मांस है सब कुछ चींटियों ने खा लिया था, केवल हड्डियां रह गई थीं। फिर भी हिरण्यकश्यप ने अपने प्राण को हड्डियों में रखा और इसलिए वो जीवित रहा। ऐसा अद्भुत कार्य कौन कर सकता है। इस दुनिया में देखा जाता है कि न केवल अच्छे लोग कभी कभी अद्भुत कार्य करते हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो भी अद्भुत कार्य दिखा देते हैं, कर देते हैं। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण है हिरण्यकश्यप। हमें जान लेना चाहिए कि चाहे वो अच्छे व्यक्ति हो या बुरे, दोनों को शक्ति मिलती है वो एक भगवान से। और इस बात को स्वयं प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा। हिरण्यकश्यप ने तपस्या के बल पर जब ब्रह्मा जी का दर्शन किया, ब्रह्मा जी को स्वयं वहां प्रकट होना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी के जो हिरण्यकश्यप के तपस्या से सारे ब्रह्मांड असंतुलित अवस्था में आ गई। हर एक लोक में उत्पात हो गया, हवा ठीक से नहीं चल रहा था, देवी देवतागण भी सांस नहीं ले पा रहे थे। सभी लोग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हिरण्यकश्यप की तपस्या के कारण हो रहा है, चिंता नहीं करो, मैं नीचे जा रहा हूं और उसको वरदान दूंगा। देवताओं ने चेतावनी दी ब्रह्मा जी को कि ये तो आपका पद चाहता है हिरण्यकश्यप, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, मैं संभाल लूंगा। ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो देखा कि हिरण्यकश्यप तो क्या केवल हड्डियां बची हैं। अपने कमंडलू से उन्होंने जल लिया और थोड़ा जल छिड़का लिया, और जैसे ही इस जल के बूंदों का स्पर्श हुआ तो हिरण्यकश्यप को एक बहुत ही सुंदर और बलवान सोने के जैसा एक शरीर प्राप्त हुआ। और फिर हिरण्यकश्यप ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मैं ये वरदान चाहता हूं कि कोई मुझे मार ना सके, दिन में न रात में, न जमीन पर, न जल में, न आसमान में। कोई पशु जो आपकी सृष्टि में है या कोई व्यक्ति जो आपके सृष्टि में नहीं है वो भी मेरी हत्या ना करे, कोई भी अस्त्र से मेरी हत्या ना हो, किसी के हाथों से मेरी हत्या ना हो, कोई मनुष्य मुझे नहीं मारे, कोई देवता नहीं मारे, कोई यक्ष राक्षस असुर आदि मुझे नहीं मारे। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने कितने सारे शर्त लगाए कि इस अवस्था में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उस अवस्था में मृत्यु होनी नहीं चाहिए। हिरण्यकश्यपु सोच रहा था कि मेरी चालाकी से मैं अमृतत्व को प्राप्त कर लूंगा, मैं मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मृत्यु के पार अगर हमें होना है तो इस दुनिया की चालाकी नहीं चलेगी। अगर हम शेर हैं तो भगवान सवा शेर, भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते। अगर हमें मृत्यु के परे होना है तो केवल भगवान की कृपा से हो सकते हैं। ब्रह्मा जी भी ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए ब्रह्मा जी सक्षम नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और फिर हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे सारे योग की सिद्धियां चाहिए, मुझे सारे युद्ध की कलाएं चाहिए। इस प्रकार से बहुत लंबा लिस्ट प्रस्तुत किया हिरण्यकश्यपु ने, और हर बार ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और फिर ब्रह्मा जी वहां से अपने धाम ब्रह्मलोक चले गए। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसे उत्पात, ऐसे उपद्रव मचा दिया सारे ब्रह्मांड में कि आगे चल के जब नरसिंहदेव प्रकट हुए थे हिरण्यकश्यपु के वध के लिए और वध कर दिया था, तो सारे देवतागण भगवान के पास आए और कहने लगे कि ये हिरण्यकश्यपु जो है ये सारे ब्रह्मांड के लिए एक मस्तक ज्वर के समान था। मस्तक ज्वर में का मतलब है कि वो ज्वर, वो बुखार जो दिमाग में चढ़ जाता है। साधारण बुखार जो है केवल सारे शरीर में रहता है, थोड़ी एक गोली लेने से वो ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी बुखार जो है सारे मस्तिष्क में, दिमाग में चले जाता है, उस समय बुखार बहुत खतरनाक हो जाता है। तो देवतागण कह रहे थे कि इतना उपद्रव हिरण्यकश्यपु ने मचा दिया था कि हम लोग भी बहुत बेचैन हो गए थे, और केवल आप ही थे जिनका सहारा हम ले सकते थे। तो देवतागण जब भी ऐसे कठिनाई में आते हैं तो भगवान के पास जाते हैं और भगवान को आश्वासन देते हैं कि मैं बहुत ही शीघ्र प्रकट हो जाऊंगा, आप डरना नहीं। जब प्रहलाद के प्रति हिंसा करेगा ये हिरण्यकश्यप तब अवश्य मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो देवतागण बड़े खुश होकर चले गए। उधर प्रहलाद के प्रति हिरण्यकश्यपु ने बहुत बहुत अत्याचार और अपराध किए। प्रहलाद का दोष क्या था कि वो भगवान कृष्ण या विष्णु के भक्त था। जो बड़े बड़े असुर होते हैं वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है कि कोई भगवान का भक्त बने, कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे चले, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ये असुरी वृत्ति है, ये असुरी विचार है जो बिल्कुल विपरीत है। जो सज्जन लोग होते हैं वो जानते हैं कि जो असुरी वृत्ति के कार्य करते हैं ये बहुत अपराध करते हैं, परंतु असुर समझते हैं कि भगवान के भक्त जो हैं ये बहुत अपराध कर रहे हैं, ये दुनिया के प्रगति में एक रुकावट है। एक सज्जन हमें मिले थे जो उड़ीसा के हैं। जैसा आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो वो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में कई वर्षों तक रहे, और चैतन्य महाप्रभु का दिव्य प्रभाव आज भी है सारे उड़ीसा प्रांत में, नीलाचल में, और सभी लोग भक्ति करते हैं, और भगवान जगन्नाथ की संस्कृति तो सब जगह उड़ीसा में फैली हुई है। तो ये व्यक्ति वो कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने उड़ीसा के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया। हमने पूछा क्यों? क्योंकि उन्होंने सबको भक्ति में मार्ग में ले आए, भक्ति का प्रचार किया, सबको भक्त बना दिया और सबको कमजोर बना दिया, सबको दुनियादारी से दूर हटा दिया। तो हमने कहा यह अपराध क्यों हुआ? ये तो अपराध नहीं है, ये तो उन्होंने सबका कल्याण किया, सबका उद्धार किया है। तो ये असुरी वृत्ति है। उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप तो आदि असुर है, असुरों के उद्गम है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे प्रहलाद जो है ये मेरी बात नहीं मानता है, मेरे जैसा उसे अच्छा असुर बनना चाहिए, सभ्य लोगों के प्रति अत्याचार करना चाहिए, इसको दूसरों को धोखा देना चाहिए, खून खराबा करना चाहिए, खूब भोग करना चाहिए, तब ये अच्छा व्यक्ति बनेगा। अब ये हरे कृष्ण हरे राम कहने लगे तो फिर क्या होगा आगे दुनिया का? आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपके तथा कथित मित्र और शुभ चिंतक भी आपके पास आते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो इस उम्र में, ये भी भक्ति? अरे पैसे कमाओ, कुछ भोग करो जीवन में, आगे चल के क्या होगा, बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन वो नहीं जानते, हिरण्यकश्यप ऐसा नहीं जानते थे। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलाने का प्रयास किया, आग में डाल के जलाने का प्रयास किया, बहुत ठंडे ठंडे पानी में डाल के मारने का प्रयास किया, ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक कर हत्या कराने का प्रयास किया, जहरीले सांपों के साथ एक गड्ढे में प्रहलाद को फेंक दिया, तरह तरह का जादू टोना उसने हिरण्यकश्यप ने किया प्रहलाद के प्रति। ऐसे बार बार करने के बावजूद प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। एक कहावत है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिस व्यक्ति को भगवान मारना चाहता है उस व्यक्ति को कौन बचा सकता है, और जिस व्यक्ति को भगवान बचाना चाहते हैं उसको कौन मार सकता है? तो पहले बात के उदाहरण है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मुझे ये ब्रह्मा जी के वरदान मिले हैं और मैं बहुत चतुर हूं, मैंने ऐसे वरदान मांग दिया कि बस विष्णु मेरा क्या कर पाएगा अभी। लेकिन जब भगवान विष्णु या कृष्ण ने ठान लिया कि हिरण्यकश्यप को मारना है तो कोई भी रोक नहीं सका। ब्रह्मा जी के वरदान पूरे करके भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की इच्छा रखी, बहुत तरकीब निकाले, लेकिन फिर भी जब भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने की इच्छा की तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद के शरीर के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। तो ये है भगवान की दिव्य शक्ति। तो जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है उसे इस दुनिया में क्या डर है, किस चीज से, किस व्यक्ति से डर है, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा वो चीज है जो हमारे पास होने से हम दुनिया में किसी भी अवस्था में डरते नहीं हैं। श्रद्धा वो चीज है जो हमारे लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में संरक्षण है। ये श्रद्धा बहुत अनमोल वस्तु है। ये केवल भक्तों के संग में पाया जाता है और भगवान की कृपा से पाया जाता है। प्रहलाद महाराज केवल 5 साल के बच्चे थे, तो ये श्रद्धा केवल आयु की बात नहीं है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको श्रद्धा है, या बैठे हैं श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं इस प्रवचन को, हालांकि प्रवचन के कई शब्द उनको शायद समझ में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन श्रद्धा है। तो यह उम्र की बात नहीं है। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं 100 साल के उम्र के हैं लेकिन पक्का नास्तिक हैं। तो प्रहलाद महाराज हालांकि 5 साल के बच्चे थे, उनकी श्रद्धा सुदृढ़ थी, अटूट थी, अटल था उनका विश्वास। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये अवश्य कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। अगर कृष्ण रक्षा करना चाहे तो ये भी भक्त जानता है। भक्त भली भांति जान लेता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है। मेरा धन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ ये भगवान की संपत्ति है। तो जब भगवान हरण करना चाहे वो कर ले। अगर आपने आपकी गाड़ी यहां रखी है और आप गाड़ी ले जाते हैं, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले की गाड़ी मत ले जाइए, ये आपकी संपत्ति है। तो उसी प्रकार से भक्त अच्छी तरह से जानता है कि ये मेरा शरीर जो है ये मेरा नहीं है, वास्तव में ये भगवान का है, और भगवान जब चाहे तब छीन के ले जाए। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो मृत्यु से कभी डरते नहीं है, क्योंकि मृत्यु ये भगवान का रूप है उनके लिए। भगवान के भक्तों के लिए मृत्यु तो भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग है, एक द्वार है। परंतु ऐसे कोई कई दुष्ट लोग रहते हैं जगत में जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, अपने आप को नास्तिक कहलाते हैं और कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। परंतु भगवान आएंगे उनके जीवन में, भगवान भी ऐसे व्यक्तियों को दर्शन देंगे, लेकिन किस रूप में? इस रूप में, मृत्यु के रूप में। ऐसे भयानक रूप में भगवान आएंगे ऐसे नास्तिक के सामने। मृत्यु के रूप में आते हैं तो बड़े से बड़े नास्तिकों को सर झुकाना पड़ता है। बड़े वो कितने भी अपना हाथ पैर फैलाए, अपने तलवार बंदूक को चलाए, लेकिन एक क्षण भी अपना मृत्यु वो टाल नहीं पाएगा। ये है भगवान की शक्ति। क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में, मृत्यु सर्वहरस चाहम, कि मैं मृत्यु के रूप में आता हूं और हर एक व्यक्ति का सर्वस्व छीन लेता हूं। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धः, भगवान कहते हैं मैं काल हूं और काल रूप में आके मैं सब कुछ नष्ट कर देता हूं। सारे ब्रह्मांड को भगवान जब नष्ट करते हैं तो फिर हमारी बात क्या है? भगवान के लिए एक ब्रह्मांड को नष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और भगवान केवल अपने सांस मात्र से अनंत ब्रह्मांडों को अपने शरीर में फिर से मिला लेते हैं। तो एक छोटे से छोटे मोटे असुर की बात क्या है? भले इस ब्रह्मांड के भीतर हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली असुर रहा होगा, लेकिन भगवान की शक्ति के तुलना में हिरण्यकश्यपु की शक्ति क्या थी? कुछ भी नहीं। फिर भी ऐसे जो असुर होते हैं वो इतने उन्मत्त हो जाते हैं उनकी शक्ति से, उनके ऐश्वर्य से, कि वो जानते नहीं है कि भगवान के सामने उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से एक जुगनू रात के समय अपने शरीर को बहुत फुला के रोशनी फैलाता है सब जगह और सब लोग वाह वाह कहते हैं, अरे बीच रात में ऐसे रोशनी आसमान में क्या है, अच्छा ये जुगनू है। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जुगनू को देखकर। लेकिन जब सूर्योदय हो जाता है और सब जगह सूरज की रोशनी फैल जाती है, तो उस समय जुगनू का क्या प्रभाव है? जुगनु का वास्तविक प्रभाव तब पता चलता है जब सूरज सामने आए। सूरज की अनुपस्थिति में जुगनू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। ठीक उसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु जैसे बड़े बड़े असुर अहंकार घमंड की वजह से अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन जब भगवान उनके सामने आते हैं, चाहे वह नरसिंहदेव भगवान के रूप में आए चाहे वह मृत्यु के रूप में आए, तो ऐसे बड़े बड़े असुर भी कुछ नहीं कर सकते। नास्तिकवाद ये मूर्खवाद है, मूर्खता का वाद है। भगवान का अस्तित्व ये तो स्पष्ट है, जिसकी थोड़ी भी बुद्धि है वो आसानी से जान पाएगा कि भगवान का अस्तित्व तो है। भगवान सब जगह समाए हुए छाए हुए हैं। सृष्टि के कण कण, सृष्टि का जो कण कण घोषणा करता है कि भगवान है, लेकिन जिसके जिसके आंखें नहीं है इस बात को देखने के लिए, वो कहता है कि भगवान नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यम नाभि जानाति लोको मामजम अव्ययम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो दुष्ट लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं हूं ही नहीं, मेरे अस्तित्व ही नहीं है। परंतु वो इस प्रकार से इसलिए सोचते हैं कि उनके आंखों के सामने मेरे माया का पर्दा है, इसलिए उनकी दृष्टि खराब है, वो समझ नहीं पाते हैं। पश्यन्नपि न पश्यति, मुझे देखते हुए भी वो पहचान नहीं सकते। और फिर अंततः उन्हें मेरी शक्ति को मानना ही पड़ता है जब मैं मृत्यु के रूप में उनके सामने आता हूं। एक बार करीब करीब 25 साल पहले एक बहुत बड़े नास्तिक थे श्रीलंका में, प्रसिद्ध थे वो, और जगह जगह जाके अपना वो प्रचार करते थे। प्रचार तो क्या, अपप्रचार करते थे कि भगवान नहीं है, धर्म ने सारे दुनिया को बिगाड़ दिया है। और वो जाके घोषणा करते थे, बल्कि भगवान को चुनौती देते थे कि अगर भगवान हैं तो आए हमारे सामने। और वो सभागृह को बुक करते थे, अखबारों में विज्ञापन छापते थे, हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि भगवान नहीं है। और फिर ऐसे आकर्षक शब्दों से वो लोगों को प्रभावित करते थे, बड़ी संख्या में लोग आते थे उन सभागृहों में, और फिर ये व्यक्ति खड़े हो जाते थे, खड़े होकर कहते थे कि भगवान अगर सब जगह हैं तो यहां भी हमारे सामने होनी चाहिए। तो भगवान अगर आप हैं तो आइए, हम आपके लिए एक घंटा इंतजार करेंगे, एक घंटा आपको हम काफी समय दे रहे हैं, आइए एक घंटे में। अगर आप आपके धाम में हैं, वैकुंठ में हैं, जहां भी है, एक घंटा तो आपके लिए काफी समय होना चाहिए, तो जरूर आइए। और अगर आप नहीं आएंगे तो इसका मतलब है आप हैं ही नहीं। तो फिर घड़ी देखकर वो एक घंटा इंतजार करते, एक घंटा बीत जाता, भगवान उनके सामने आए नहीं, तो कहते देखो कहां है भगवान। और थोड़े जो बेचारे लोग थे जिनकी अल्प बुद्धि थी, श्रोतागण, हाँ हाँ देखो कितनी अच्छी बात कही, भगवान कहां है, किसने देखा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जाकर अपप्रचार करते थे। हाँ, भगवान ने थोड़ा विलंब कर दिया, अंततः भगवान आए तो सही, लेकिन उस व्यक्ति के मृत्यु के रूप में आए। उस समय उस व्यक्ति ने, जिसका नाम था इब्राहिम कबूर, उसने भगवान का दर्शन किया, लेकिन एक बहुत भयंकर रूप में, मृत्यु के रूप में। उस समय उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं थी, वो कह नहीं पाया कि मैं भगवान को देख रहा हूं, वो पहचान भी नहीं सका भगवान को। भगवान आए उसके सामने, लेकिन एक बहुत ही भयानक रूप में आए। मृत्यु भी भगवान का ही रूप है। हम यहां भगवान के मंदिर में हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण का सुंदर रूप बांसुरी बजाते हुए, श्रीमती राधा रानी के साथ खड़े हुए। ये भगवान का बड़ा सुंदर रूप है, आदि रूप है, लेकिन कभी कभी ऐसे दुष्ट लोगों को सबक सिखाने के लिए, उनको दर्शाने के लिए, साबित करने के लिए कि मैं हूं, भगवान मृत्यु का रूप धारण करते हैं। और कभी कभी ये मृत्यु का रूप जो है ऐसे अद्भुत रूप भी धारण करते हैं भगवान, जैसे कि भगवान नरसिंहदेव। तो हिरण्यकश्यपु सोच रहे थे कि कौन है ये भगवान। जब बारंबार प्रहलाद को मारने का प्रयास असफल हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया, हे मूर्ख, तुम्हें इतनी शक्ति आई, तुम नहीं जानते कि सारा ब्रह्मांड मेरे नाम सुनने मात्र से कांपता है और तुम यहां खड़े हो, मेरे सामना करते हो और बिल्कुल नहीं डरते हो मुझसे। हिरण्यकश्यप के मन में वास्तव में भय उत्पन्न हो गया था। हिरण्यकश्यप किसी से नहीं डरता था, इंद्र चंद्र वरुण सूर्य से भी नहीं डरता था। कोई ऐसा योद्धा नहीं था सारे ब्रह्मांड में जो हिरण्यकश्यपु का सामना कर सके। फिर भी हिरण्यकश्यपु के पूरे प्रयास के बावजूद जब प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप के हृदय में पहली बार डर आने लगा कि ये बच्चा है क्या, ये तो मेरा बच्चा है लेकिन क्या है ये बच्चा, आज तक मैंने ऐसे बच्चे को कभी देखा नहीं है, इतना सब हमने किया और फिर भी ये बच्चे के शरीर के ऊपर एक बाल भी नहीं बक रहा है, ये क्या है ये बच्चा। और फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मृत्यु अभी बहुत करीब है, इस प्रकार से मेरे प्रति व्यवहार करके तुम मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो, बहुत ही शीघ्र मैं तुम्हें यमलोक भेजने वाला हूं। वास्तव में प्रहलाद के प्रति ऐसे शब्द बोल के स्वयं हिरण्यकश्यपु मृत्यु को निमंत्रण दे रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु इस बात को पहचाने नहीं। प्रहलाद निश्चिंत रहे, प्रहलाद के हृदय में कोई भय नहीं था, हिरण्यकश्यपु के हृदय में भय था। हालांकि प्रहलाद एक नाजुक कोमल 5 साल के बालक थे, साधारण बालक बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर अपनी मां की गोदी में भाग जाते हैं 5 साल की आयु में, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल नहीं डरे। तो ये शक्ति कहां से आई, भगवान की भक्ति से आई। फिर हिरण्यकश्यप कहने लगे कि प्रहलाद तुम्हारी शक्ति कहां से आती है, तुमको यह साहस कहां से मिला है कि मेरा सामना करने से लिए, मुझसे टक्कर लेने के लिए। तो प्रहलाद ने बहुत ही मीठे शब्दों से उत्तर दिया कि हे पिताजी, जिस व्यक्ति ने आपको शक्ति दी है सारे ब्रह्मांड को वश करने के लिए, उसी व्यक्ति ने मुझे भी शक्ति दी है आपका सामना करने के लिए, आपसे टक्कर लेने के लिए। उस समय हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया और अपने तलवार लिए हाथ में, मुझे लगता है कि आज तुमने मुझे मेरे हाथों में मरने का व्रत लिया है, तुम ठान के आए हो कि मेरे हाथों आज मारे जाने वाले हो, तो ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारा ये जो भगवान विष्णु है किस तरह तुम्हारी मदद करता है, हम देखते हैं कि कौन रास्ते में आता है। और तलवार हाथ में लिए हुए हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के सामने खड़े रहे। प्रहलाद डरे नहीं, आराम से खड़े थे भगवान का स्मरण करते हुए। भक्ति करने की कई पद्धतियां हैं, जैसे भगवान की कथाएं और नाम का श्रवण करना, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। प्रहलाद महाराज ने खुद ऐसे उपदेश दिए हैं कि नवविधा भक्ति है, इनमें से किसी भी अंग को स्वीकार करने मात्र से कोई भी भक्त अपने जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का कीर्तन किया और जीवन को सफल बनाया। परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और अपने जीवन को सफल बनाया। ठीक उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर भक्ति भाव से स्मरण किया और इस स्मरण मात्र से प्रहलाद महाराज ने भगवान को जीत लिया। प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत प्रिय थे और इसलिए भगवान प्रहलाद के लिए स्वयं यहां पर प्रकट होने के लिए तैयारी में थे। हिरण्यकश्यप कहने लगे, तुम तो बहुत मूर्ख बच्चे हो। क्यों सोचते थे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मूर्ख? क्योंकि हिरण्यकश्यप की सारी संपत्ति क्या थी? यहां सोचे कोई अमीर आदमी है, उसकी क्या संपत्ति है? एक बंगला है, दो बंगले हैं, चार पांच बंगले हैं, थोड़े करोड़ रुपए बैंक में या इधर उधर पड़े हुए हैं। दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी, उसके पास कितना धन है? दो चार दस हवाई जहाज भी हो सकते हैं, नौके भी हो सकते हैं, 10,000 महल भी हो सकते हैं, और क्या। लेकिन हिरण्यकश्यप के पास कितनी संपत्ति थी? सारा ब्रह्मांड प्राय हिरण्यकश्यप की संपत्ति हो गई थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने सारे देवताओं का दमन कर लिया था। और हिरण्यकश्यप सोच रहे थे, मेरा ये बेटा है, आगे चल के जब मेरे बाद में इस बच्चे को तो संपत्ति मिलनी है, लेकिन ये बच्चा इतना मूर्ख है कि इतने बड़ी संपत्ति को ठुकरा रहा है। उसको पता नहीं कि केवल ये मेरा आज्ञाकारी पुत्र बना रहेगा तो सारे ब्रह्मांड का राजपद इसको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये मूर्ख लड़का है, इसको ये राज संपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन हिरण्यकश्यप एक बात को भूल गए थे कि ये संसार की जो संपत्ति है ये क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल ये नष्ट होना ही होना है। तो ऐसे समृद्धि को संपत्ति को प्राप्त करने से क्या बड़ा लाभ होने वाला है? चाहे हम इसे एक साल के लिए हमारे पास रखें या 10,00,000 साल के लिए रखें, अंत में वो संपत्ति हमसे छीन ली जाने वाली है। हिरण्यकश्यप ये नहीं जानते थे कि प्रहलाद के वास्तविक पिता कौन थे। हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद के शारीरिक पिता थे, केवल प्रहलाद का शरीर का जन्म हिरण्यकश्यप के शरीर ने जन्म दिया था, परंतु वास्तव में हम सबके परम पिता भगवान श्री हरि हैं, श्री कृष्ण। और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो अपने पिता श्री कृष्ण की अनमोल संपत्ति को प्राप्त करता है। और भगवान की संपत्ति इतनी विशाल है, इतना अनमोल है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड भी ऐसे संपत्ति के सामने केवल एक घास के तिनके के बराबर है। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में प्रार्थना करते हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपोर्भिर्विदधं नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाक। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में भी ये भले भांति जान लेता है कि जिन कष्टों का सामना मैं कर रहा हूं इनके लिए जिम्मेदार केवल मैं हूं, मैंने पूर्व काल में बहुत पाप किए होंगे जिसकी वजह से मुझे ये कष्ट अब भुगतना पड़ रहा है, तो मेरे कष्टों का कारण एकमात्र मैं ही हूं, और इस भावना से अपने कष्टों को सहन करते हुए आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता है, इस कष्ट को भी आपकी कृपा ही मानता है, और ऐसे प्रतीक्षा करते करते अपने हृदय से, अपने वाक या अपने वाणी से, अपने कार्यों से आपकी सेवा करता है, आपको नमन करता है, नमस्कार करता है आपको, तो वो अवश्य ही जीवेत यह मुक्ति पदे सदाय भाग, वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाएगा, आपके चरण कमलों के प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। दाय भाग मतलब वो अधिकार हो जाएगा उसको, वो आपको ही प्राप्त कर लेगा, आपको खरीद लेगा। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो भगवान को भी खरीद सकती है। भगवान अपने भक्त को भक्त के हवाले हो जाते हैं, बेच डालते हैं भगवान अपने भक्त को भक्ति के कीमत पर। किसी भौतिक धन की कीमत पर भगवान को हम नहीं खरीद सकते, लेकिन भक्ति के बल पर भगवान भक्त के हाथ में एक कठपुतली भी होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है भक्ति की शक्ति। हमारे एक वैष्णव आचार्य हैं जिनका नाम है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने इस श्लोक के ऊपर एक सुंदर टीका लिखी है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से इस जगत के इस पृथ्वी लोक में अगर किसी लड़के को अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करनी है तो उसे क्या करना चाहिए, केवल जीवित रहना चाहिए। केवल जीवित रहेगा अपने पिताजी के साथ में, जब पिता का देहांत हो जाएगा तो पिता की संपत्ति सारा जायदाद तो उसे मिलने ही वाला है। ठीक उसी प्रकार से जब भक्त श्रद्धावान रहता है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय, भगवान की सेवा किसी भी परिस्थिति में छोड़ता नहीं है और केवल भक्ति में टिका रहता है अंत तक, तो निश्चित ही वो भगवान के धाम को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, भगवान की जायदाद उसको मिल जाती है। जिस प्रकार से पिताजी का बंगला गाड़ी सब बच्चे को मिल जाता है पिता की मृत्यु के बाद, उसी प्रकार से भगवान का सारा धाम जो है वैकुंठ जगत भक्त को प्राप्त हो जाता है। ध्रुव महाराज को तो भगवान ने ऐसे ही किया। ध्रुव महाराज को भगवान ने, भगवान प्रश्नी गर्भ ने, विष्णु के अवतार है ये, उन्होंने ध्रुव तारा दे दिया जो कि इस ब्रह्मांड के भीतर एक वैकुंठ लोक है। ध्रुव तारा आज भी दिखाई पड़ता है उत्तर दिशा में, ठीक उत्तर में। तो प्रहलाद भगवान के शुद्ध भक्त थे, आदर्श शुद्ध भक्त, और इसलिए उनको तो भगवान का सारा धाम प्राप्त होना था। वैसे भी ये जायदाद प्राप्त होनी थी और हिरण्यकश्यप को यह बात नहीं पता था। हिरण्यकश्यप केवल इस ब्रह्मांड के जायदाद की बात सोच रहा था, वो नहीं जानता था कि ये प्रहलाद जो है ये मेरा बेटा है, इसको कहीं ज्यादा कुछ मिलने वाला है इस एक बहुत ही तुच्छ एक ब्रह्मांड की तुलना में। और इसलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मूर्ख कह रहा था कि तुम नहीं जानते कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, इस ऐश्वर्य को छोड़ के तुम हरे कृष्ण हरे राम करने बैठे हो। तो यहां हिरण्यकश्यप के अनुयायी कई हैं आजकल भी। अरे क्या मंदिर में जाते हो, समय बर्बाद करते हो, अरे क्या ये भजन कीर्तन जप माला करते हो, अपने समय का अच्छा प्रयोग करो, कुछ ज्यादा पैसे कमाओ, कुछ भोग करो। तो ये हिरण्यकश्यप का दर्शन जो है, उनके विचारधारा आज भी प्रचलित हैं। परंतु जैसे प्रहलाद का अंत में विजय हुआ, वैसे आज के काल में भी भक्तों की विजय होनी है, निश्चित है। जिस पक्ष में भगवान है वहां तो जीत होनी ही है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, बल्कि संजय ने कहा है, श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानीति मतिर्मम। संजय कहते हैं कि जहां पर कृष्ण है जिनका नाम योगेश्वर भी है, और जहां धनुर्धर अर्जुन हैं अर्थात उनके भक्त हैं, वहां पर हर अच्छी चीज, हर मंगलमय चीज, विजय ऐश्वर्य नीति सब कुछ वहां पर निश्चित है। तो जब प्रहलाद भक्त हैं तो प्रहलाद की जीत निश्चित थी, लेकिन हिरण्यकश्यप इस बात को नहीं जानते थे। और हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखता हूं अब कैसे तुम्हारा विष्णु तुम्हें बचाता है, कहां है तुम्हारा विष्णु। जब हिरण्यकश्यप ऐसे भयानक स्वरों में बात कर रहा था एक नाजुक 5 साल के बालक के सामने, प्रहलाद महाराज केवल अपने हाथ जोड़कर ठीक अपने सामने देख रहे थे एक खंभे की ओर। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मैं इस बालक से बात कर रहा हूं और एक ही खंभे की ओर देख रहा है, तो खंभे की ओर देखने लगे, कहां है तुम्हारा भगवान, देखते हैं क्या इस खंभे में है। तो प्रहलाद महाराज ने बड़े मीठे ढंग से कहा, अवश्य इस खंभे में भी है। तो वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि उस समय वास्तव में प्रहलाद भगवान नरसिंहदेव को इस खंभे में देख रहे थे। उस समय नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए थे परंतु खंभे के अंदर थे, केवल प्रहलाद उनको देख पा रहे थे, हिरण्यकश्यप नहीं देख रहे थे। हिरण्यकश्यप की दृष्टि स्थूल दृष्टि थी, ग्राह्य इंद्रियों से हम भगवान को देख नहीं सकते, दिव्य चक्षु चाहिए जो कि प्रहलाद महाराज के पास थी। तो जब प्रहलाद ने ऐसे कहा तो बड़े क्रोध से हिरण्यकश्यपु इस खंभे के सामने आया और बलपूर्वक मुक्का प्रहार किया उस खंभे के ऊपर। और उस समय एक ऐसे अति भीषण ध्वनि आई कि ब्रह्मलोक तक वो ध्वनि पहुंच गई और ब्रह्मा जी, चंद्र, इंद्र, वरुण सब जगह सभी देवता गण भी कांपने लगे, बड़े भयभीत हो गए। जिस प्रकार से बादलों की गर्जना सुनकर या एक सिंह की गर्जना सुनकर यह इंसान कांपने लगते हैं डर से, और देवतागण सोचने लगे कि अब सब पृथ्वी का, अब तो सारे ब्रह्मांड का नाश होने का समय आ गया, हमारे लोक भी नष्ट हो जाने वाले हैं अभी इस समय। हिरण्यकश्यप भी आश्चर्यचकित हो गया, इधर उधर, इधर ऊपर नीचे, बाएं दाएं देखने लगा, आवाज कहां से आ रही है, किसी को पता नहीं चल रहा था कि ध्वनि कहां से उत्पन्न हो रही है। और ठीक उस समय भगवान उस खंभे के माध्यम से प्रकट हुए। यहां शुकदेव गोस्वामी सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से नरसिंहदेव भगवान उस खंभे के भीतर से प्रकट हुए। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेष्व चात्मनः अदृश्यतात्याद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम्। सत्यम, सत्य, विधातुम अर्थात साबित करने के लिए, किनका, किनकी बातों को साबित करने के लिए, निज भृत्य भाषितम्। भृत्य मतलब सेवक, अपने निजीय सेवक के बात को सिद्ध करने के लिए, सही साबित करने के लिए भगवान ने क्या किया, भगवान प्रकट हो गए। अति अद्भुत रूपम उद्वहन, उस खंभे के भीतर से एक अति अद्भुत रूप स्वीकार करके बाहर आए। स्तंभे सभायाम, जो सभा के भीतर वो स्तंभ था, खंभा था, उसके भीतर से भगवान प्रकट हुए। कैसा रूप था उनका, न मृगम न मानुषम, न पशु का रूप था और न मनुष्य का रूप था। गर्दन के ऊपर से एक सिंह का रूप था और गर्दन के नीचे मनुष्य का रूप था, नर हरि, नरसिंह, नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान ऐसे एक अद्भुत और हिरण्यकश्यप के लिए भयानक रूप में बाहर आए, गर्जना करते हुए। बहुत ही भयानक थी उनकी गर्जना। हिरण्यकश्यप भी उस गर्जना को सहन नहीं कर पाए, अपने कान रोक बंद कर लिए। हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया। हिरण्यकश्यप ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई रूप हो सकता है। हिरण्यकश्यप से अपनी रक्षा के लिए वरदान मांगा था, कोई पशु ने हत्या मेरी नहीं करनी चाहिए, मनुष्य ने नहीं करना चाहिए, यक्ष ने नहीं, राक्षस ने नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यप की बुद्धि इतनी आगे नहीं बढ़ी थी कि वो मांगे कि मनुष्य और पशु का मिला हुआ रूप मेरी मृत्यु न करे। देखिए भगवान इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी के वचनों को भी सत्य साबित किया, ब्रह्मा जी को लज्जित नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और ब्रह्मा जी भी तो भगवान के भक्त हैं। अगर ये वरदान ब्रह्मा जी का ठीक सही नहीं साबित हुआ होता तो ब्रह्मा जी का अपमान हुआ होता, तो भगवान ये नहीं चाहते थे। तो भगवान श्री हरि ने जब नरसिंह देव भगवान का रूप धारण किया तो उन्होंने अपने दोनों भक्त के वचनों को सही साबित किया, ब्रह्मा जी और प्रह्लाद महाराज। प्रह्लाद महाराज की कौन सी बात थी जो भगवान ने सत्य साबित की? कि प्रह्लाद ने कहा था हिरण्यकश्यप के प्रश्न के उत्तर में कि भगवान सब जगह हैं, हां इस खंभे के भीतर भी हैं। बड़े उत्साह से, बड़े निश्चितता से, विश्वास से, श्रद्धा से कहा, हां है यहां पर। क्या हमारे अंदर ये श्रद्धा है? हम कह तो देंगे अगर कोई पूछे तो, क्या इस खंभे में भगवान है? हम बोलेंगे तो सही, प्रह्लाद की कथा तो आके सुनी है ना हमने, हम तो बोलेंगे अवश्य है यहां पर। लेकिन क्या हमारे हृदय में वो श्रद्धा है कि वास्तव में है यहां, यहां भी नरसिंह देव हैं? हृदय नरसिंह, बाहर नरसिंह, बाहर भी है हृदय में भी है। यतो याम इततो नरसिंह, यहां भी है वहां भी है, हृदय में भी है बाहर में भी है, खंभे में भी है, सब जगह नरसिंह देव हैं। प्रह्लाद महाराज की यह श्रद्धा थी। और भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, जितनी ज्यादा हमारी श्रद्धा उतनी ज्यादा संभावना कि भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। आधी श्रद्धा तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, कोमल श्रद्धा से भगवान आकर्षित नहीं होते हैं। प्रह्लाद महाराज जैसे, प्रह्लाद महाराज की श्रद्धा जैसे थी, ऐसे श्रद्धा से प्रेम से भगवान आकर्षित होते हैं। देखिए प्रह्लाद का स्थान क्या है, भगवान नरसिंह देव कहां से आए? बहुत दूर से आए, वैकुंठ लोक से आए। इतने दूर यहां पर भौतिक जगत के भीतर एक लोक के ऊपर आए। किसके लिए आए इतनी दूर? केवल एक बच्चे के लिए, एक 5 साल के बच्चे के लिए आए, बस उसको बचाने के लिए आए। तो देखिए भगवान का प्रेम कितना तीव्र है। और प्रह्लाद का महात्म्य जानिए इस घटना से। समझ लीजिए कि कोई 5 साल का बच्चा है, किसी घर में रहता है यहां पर बेलगाम में, और दिल्ली से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब विशेष हवाई जहाज में आए केवल उस बच्चे को देखने के लिए बेलगाम में। अगर आपका बच्चा है उस बच्चे को देखने के लिए आए तो क्या ये अद्भुत बात नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री खास करके दिल्ली से यहां बेलगाम आ रहे हैं आपके बच्चे को देखने के लिए, तो सारे पड़ोस में तो आपकी प्रसिद्धि तो बहुत बढ़ जाएगी। तो देखिए प्रह्लाद महाराज की शक्ति ये थी कि वो भगवान को आकर्षित कर सके, और खास विशेष उनकी रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए। केवल हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नहीं प्रकट हुए, वो प्रह्लाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। असुरों को मारने का सवाल जब आता है तो भगवान तो किसी भी तरह मार सकते हैं उनको, इच्छा मात्र से मार सकते हैं, परंतु जब प्रेम होता है तो भगवान अपने निजी कर कमलों से भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं, वो कार्य किसी दूसरे को नहीं देना चाहते। असुरों को मारने का कार्य वो दूसरों को सौंप सकते हैं भला, परंतु भक्तों की रक्षा करने का कार्य स्वयं भगवान अपने अपने आप करना चाहते हैं। इसलिए नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये क्या है, ये क्या चीज है। देखते रह गए, विश्लेषण कर रहे थे कि ये रूप क्या है, ये नरसिंह ये क्या नर है, पशु है, ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर नरसिंह देव भगवान गरजते रहे और उनकी गरज जो है चीख के बराबर थी, ऐसे जोर जोर से चीखते रहे कि हिरण्यकश्यप के रोंगटे खड़े हो गए और हृदय भय से कांपने लगा। लेकिन फिर अपना साहस फिर से एकजुट करके कूद पड़े भगवान नरसिंह देव के ऊपर। हमें जानना चाहिए कि भौतिक दृष्टि से हिरण्यकश्यप की शक्ति भी बड़ी अद्भुत थी, भगवान के सामने तो वो कुछ भी नहीं थे, वो दूसरी बात है, लेकिन भौतिक कल्पना से तो उनकी शक्ति बहुत विशेष थी। आक्रमण करके नरसिंह देव पे उन्होंने प्रहार किया, नरसिंह देव ने भी बड़ा युद्ध किया उनके साथ। थोड़ी देर में भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने शस्त्रों के समेत पकड़ लिया, पकड़ के रखा। उस समय हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया कि अब मेरी मृत्यु आ गई। जानबूझकर भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप को लगा कि मेरे शक्ति से मैंने अपने आप को छुड़वा दिया और ये नरसिंह जो भी है ये विष्णु है, विष्णु का ही रूप लग रहा है, ये हमारी शक्ति से डर गए हैं। देखिए असुरी प्रवृत्ति के लोगों की बुद्धि इस प्रकार से भ्रष्ट हो जाती है। उधर सारे ब्रह्मांड के देवी ए देवता बादलों के पीछे छुपकर देख रहे थे और बड़े चिंतित हो गए थे जब उन्होंने देखा कि भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया है, तो वाहवाकार करने लगे, साधु साधु बहुत अच्छा। लेकिन जब हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह देव के मूर्ति से छूट गए तो सारे देवतागण हाय हाय करने लगे, अब क्या होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक में कि देवताओं को यह भी डर था कि हिरण्यकश्यप ने अगर उनको देख लिया कि सारे देवतागण बादलों के पीछे छुपकर खुशी से ये राह देख रहे हैं कि कब हिरण्यकश्यप का वध होगा, और अगर हिरण्यकश्यप बच गया तो फिर ऐसे बदला लेगा वो देवताओं के ऊपर कि देवताओं की बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए देवतागण अचानक थोड़े डर गए थे, फिर से बादल के पीछे चले गए। परंतु भगवान तो हिरण्यकश्यप से केवल खेल रहे थे, हिरण्यकश्यप के लिए तो जीवन मृत्यु का सवाल था, युद्ध कर रहा था वो। भगवान युद्ध नहीं कर रहे थे, वो तो खेल कर रहे थे, लीला है भगवान की ये। जिस प्रकार से गरुड़ कभी अब एक सांप को, एक बड़े विशाल सांप को भी अपने चोंच पे पकड़ लेते हैं और मजाक के लिए कभी छोड़ भी देते हैं, फिर से पकड़ लेते हैं, उस प्रकार से नरसिंह देव हिरण्यकश्यप के साथ खेल रहे थे। लेकिन जब भगवान के करकमलों से छूट गए हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु डर गए हैं, फिर से साहस इकट्ठा किया और आक्रमण किया। हिरण्यकश्यप के पास ब्रह्मा जी की कृपा से सारे योग शक्तियां थी, तो हिरण्यकश्यप इस प्रकार से आसमान में उड़ रहे थे, बिल्कुल बिजली की तरह, बिजली की गति से हिल रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां से इस दिशा से आक्रमण किया, कभी उस दिशा से आक्रमण किया। इतनी तेजी से हिरण्यकश्यप अपनी योग शक्ति के बल पर हिल रहे थे और आक्रमण कर रहे थे, केवल भगवान ही उनका सामना कर पाए थे, और कोई होता तो शायद नहीं कर पाता। लेकिन नरसिंहदेव भगवान के सामने हिरण्यकश्यप तो बहुत छोटा था, फिर भी आक्रमण जारी रहा। आखिर देवताओं के चिंता को देखकर नरसिंहदेव भगवान ने सोचा, चलो यहां मामले को समाप्त कर देते हैं। उन्होंने पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और उठाया, शरीर को उठाकर चले और हिरण्यकश्यप के सिंहासन में ही बैठे, हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में रख दिया और गोदी में रख के हिरण्यकश्यप जब अपने हाथ पैरों को बहुत इधर उधर फैला रहे थे, बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान ने इस प्रकार से पकड़ लिया था कि हिरण्यकश्यप को छूटने के लिए इस बार कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी। फिर अपने नाखूनों से, अपने दिव्य नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को फाड़ डाला बड़े आसानी से। भगवान के कर कमल, उनके नख आदि बहुत नाजुक होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, परंतु ऐसे कोमल नाखून और कर कमलों से, उनके नाखूनों से उन्होंने ऐसे एक वक्षस्थल को फाड़ डाला जो पत्थर के समान कठोर था, बड़े आसानी से फाड़ दिया। और उनकी अथड़ियां ली और फिर अपने गले में माला जैसे पहन लिया और उधर अपने विजय के उत्साह में जोर जोर से गरजने लगे। फिर हिरण्यकश्यप के सैनिक आए, केवल अपने नाखूनों से उन्होंने सारे सैनिकों की, असुरों की हत्या कर दी। नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में बिठाया, जो कि न जमीन था न आसमान। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया ठीक सूर्यास्त के समय, जो कि न दिन होता है न रात। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया अपने नाखूनों से, जो न हाथ है न शस्त्र है। उन्होंने अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का वध करके ये भी साबित किया, ये भी ब्रह्मा जी का वरदान रखा कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु न किसी जीवित वस्तु से होनी थी न किसी मरे हुए वस्तु से, क्योंकि नाखून जीवित भी है मृत भी है। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को के वरदान जो है उनको बनाए रखा और हिरण्यकश्यप का वध भी कर दिया। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। फिर सारे देवता आए वहां पर, उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़ के स्तुति करना शुरू किया, लेकिन भगवान कुछ मूड में नहीं थे उनकी प्रार्थना सुनने के लिए। वो अभी भी अपने उग्र रूप में गर्जना कर रहे थे, क्रोध इतना था उनका शांत नहीं हो पा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि आगे जाओ, देखो लक्ष्मी देवी भी अपने पति को पहचान नहीं रही हैं, लक्ष्मी देवी आगे नहीं जा रही हैं, आप जाओ प्रहलाद। और प्रहलाद बिल्कुल निडर होकर आगे चले गए, हाथ जोड़कर आए और पूरा दंडवत प्रणाम किया भगवान को। जैसे ही भगवान ने अपने सामने प्रहलाद को देखा, उनका सारा गुस्सा शांत हो गया और तुरंत उन्होंने अपने कर कमलों से प्रहलाद महाराज के सर का स्पर्श किया। और जैसे ही यह स्पर्श हुआ, प्रहलाद महाराज को ऐसे लगा कि मानो भगवत प्रेम की ज्वालामुखी उनके हृदय में फूल उठी है और ऐसे एक आनंद, दिव्य आनंद की अनुभूति हुई प्रहलाद महाराज को, बस वो वैसे के वैसे खड़े ही रह गए। फिर प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा कि प्रहलाद, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी भक्ति से, मैं तुम्हें यहां कोई वरदान देने के लिए आया हूं, मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रहलाद महाराज ने कोई वरदान नहीं मांगा, फिर भी भगवान कहने लगे, नहीं मांगो, मैं तुम्हें इस भौतिक ब्रह्मांड का ऐश्वर्य भी दूंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इस ऐश्वर्य का दुरुपयोग नहीं करोगे। राज सिंहासन पर बैठकर यहां सुख प्राप्त करके अपने पुण्यों को क्षीण करोगे, पुण्य करके अपने पुण्य की पूंजी बढ़ाओगे और अंततः मेरा स्मरण करते करते जब तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा तो मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। फिर प्रहलाद ने पूछा, जब बार बार भगवान वरदान के लिए बोल रहे थे, कि मैं आपसे केवल एक वरदान मांगता हूं, वो ये है कि मेरे हृदय के अंदर एक भी कोई ऐसी इच्छा न हो जो कि भौतिक हो, जो आपकी सेवा से विपरीत हो, जो आपके भक्ति के लिए प्रतिकूल हो, ऐसी कोई इच्छा मेरे हृदय में नहीं रहे, ये मैं आपसे वरदान चाहता हूं। और फिर आगे चल के और एक वरदान प्रहलाद ने मांगा, जब भगवान बोल रहे थे और कहो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप, उन्होंने आपके प्रति बहुत बड़े अपराध किए। प्रहलाद ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पिता ने मेरे प्रति अपराध किए, उन्होंने आपके प्रति अपराध किया, आपसे युद्ध किया, आपको अपशब्द कहे, तो कृपया मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। देखिए ये है प्रहलाद के गुण। प्रहलाद के मन में अपने पिता हिरण्यकश्यप के प्रति बिल्कुल द्वेष नहीं था। कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ कोई एक भी कोई उल्टा शब्द बुरा शब्द बोल देता है तो हम जीवन भर भूलते नहीं है, कई साल बाद भी हम याद रखते हैं कि इस व्यक्ति ने उस दिन मेरे साथ ऐसे कहा था। लेकिन प्रहलाद की चेतना देखिए, इतना कुछ हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के विरुद्ध किया, फिर भी प्रहलाद के मन में हिरण्यकश्यपु के प्रति लेश मात्र भी द्वेष नहीं था, बल्कि वो हिरण्यकश्यप का हित चाहते थे। जब भगवान ने प्रहलाद की प्रार्थना सुनी तो उन्होंने कहा, प्रहलाद चिंता नहीं करो, जब कहीं किसी जगह में कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां पावन हो जाती हैं, उनका उद्धार हो जाता है, तो तुम्हारे पिता क्या, तुम्हारे 21 पीढ़ियों का बेड़ा पार हो गया है। तो देखिए, अगर हम भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं एक दिन, हमारे भी 21 पीढ़ियां पावन हो जाएंगी। ये भगवान नरसिंह देव का आश्वासन है जो भागवत में उन्होंने किया हुआ है। तो अगर कोई रिश्तेदार हमसे कहते हैं कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत ज्यादा मंदिर में जा रहे हो, उनको कहना चाहिए आपका उद्धार हो जाएगा, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, चिंता नहीं करना। जो लाभ आपको मिलेगा मेरे मंदिर में जाने से, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये प्रमाण स्वयं भगवान ने दिया है इस श्रीमद् भागवत में। तो ये है प्रहलाद का गौरव, ये है भगवान श्री नरसिंह देव का गौरव। तो आज के इस दिवस पर, कई कई साल पहले भगवान नरसिंह देव इस रूप में प्रकट हुए थे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए। तो हम अब नरसिंहदेव भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी हमारी रक्षा करे। किसकी रक्षा करे? केवल शरीर की नहीं, हमारे भक्ति भाव की रक्षा करे, हमारे चेतना की रक्षा करे, कि हमारा चेतना कभी भी प्रदूषित न हो जाए, भौतिक कलमश उसमें न आ जाए, हमारे हृदय में उनके प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति जागृत हो जाए। ये प्रार्थना उनके आज के प्राकट्य दिवस पर हम कर सकते हैं। अवश्य भगवान नरसिंह देव हालांकि बहुत कठोर रूप धारण करते हैं असुरी प्रवृत्ति के लोगों से, परंतु भक्तों के साथ में सामने बहुत सौम्य रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार से एक शेरनी होती है दूसरों के लिए बहुत भयानक होती है, लेकिन जब शेरनी का बच्चा होता है तो बच्चे के साथ शेरनी कैसे व्यवहार करती है, तो ठीक उसी प्रकार से असुरों से भगवान नरसिंह देव बहुत कठोर होते हैं। वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि कोमलम्, वज्र से ज्यादा कठोर होते हैं, लेकिन भक्तों के साथ एक फूल, एक गुलाब के फूल से भी ज्यादा कोमल होते हैं। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, प्रहलाद की तरह हम भी भगवान के सामने जाके ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति का वरदान आप प्रदान कीजिए, और अवश्य भगवान नरसिंह देव हमारी इच्छा को पूरी करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एक या दो प्रश्न। फिर अब आरती होनी है और फिर सबके लिए प्रसाद है। कृपया कोई प्रसाद लिए बिना न जाएं यहाँ से। और यहाँ कई उत्सव होते रहते हैं राधा गोकुल आनंद मंदिर में, उन सब उत्सव में कृपया आप शामिल होइएगा। यहाँ हर रोज सुबह को कार्यक्रम होता है, मंगलवार, शनिवार, रविवार को भी विशेष कार्यक्रम होते हैं। इनमें आप शामिल होइए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। प्रश्न ये है कि देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं, तो भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की हिरण्यकश्यप से? रक्षा तो की, इसलिए वो सब जीवित ही थे। परंतु इससे ज्यादा उन्होंने उनकी चेतना की रक्षा की, क्या करके? उनसे सब कुछ छीन के। हिरण्यकश्यपु ने उनसे नहीं छीना, भगवान ने हिरण्यकश्यपु को एक निमित्त बनाया देवताओं का, देवताओं की संपत्ति उनसे छीन लेने के लिए। कभी कभी भगवान अपने भक्तों के ऊपर भी इस प्रकार से कृपा करते हैं, सब कुछ उनका छीन लेते हैं, ताकि उनके भक्त जो हैं पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, यस्याहम अनुघृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैहि। मैं जब मेरे भक्तों के ऊपर कृपा करता हूं तो उनका सब कुछ हर लेता हूं। तो अवश्य भगवान नरसिंह देव ने अपने देवताओं के ऊपर भी कृपा की। एक आखिरी प्रश्न, ठीक है, कई